हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के सायरन की तेज आवाज गूंज रही थी। काफी भीड़भाड़ के बीच दो स्ट्रेचर को हॉस्पिटल के अंदर घसीटकर लाया जा रहा था। उनमें से एक पर आहन था तो दूसरे पर चाहत। आहन पूरी तरह बेहोश नहीं था, उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। उसके दिमाग में कुछ आवाजें गूंज रही थी। डॉक्टर, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाओ, सिचुएशन काफी क्रिटिकल लग रही है। पेशेंट हमें हाईवे के पास मिला था, सिर पर काफी गहरी चोट लगी है। आहन ने अपने दिमाग पर जोर दिया। सब चीजें उसके दिमाग में तेजी से चलने लगी थीं। उसे हॉस्पिटल में लेकर आना और फिर काफी दिनों बाद होश में आने पर अक्षरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। डॉल, तुम मेरी डॉल नहीं हो, आहन ने मन ही मन कहा। वो बोलने की हालत में नहीं था। आहन ने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वही मंजर था, हॉस्पिटल और दौड़ते हुए लोग। इस बार आवाजें थोड़ी अलग आ रही थीं। डॉक्टर, जल्दी से दो ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, लड़की प्रेग्नेंट है, कुछ भी करके बच्चे और इसकी माँ को बचाने की कोशिश करेंगे। टीम को तैयार करवाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक मेल डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसी के साथ आहन की आंखें बंद हो गईं। आहन और चाहत हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे, लेकिन बीच में ही राजवीर ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया था। आहन को थोड़ा होश हुआ तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसे चाहत कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ ही देर में आयुष और शिवानी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आहन और चाहत का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके साथ में तनु और श्रद्धा भी थीं। शिवानी रोते हुए बोली, न जाने किसकी बुरी नज़र लग रही है मेरे घर को, इतने सालों में कभी खुशियां नसीब नहीं हुई, अब जब सब सही होने को आया था तो दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। आयुष की आंखें भी नम थीं। उसने शिवानी को सीने से लगाकर कहा, मॉम प्लीज हिम्मत रखिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचते हैं ताकि अच्छा ही होगा, दिमाग से सारे नेगेटिव ख्यालों को निकाल दीजिए, किसी की नज़र नहीं लगी है, बस छोटा सा एक्सीडेंट ही है। आयुष ने बोला ही था कि तभी डॉक्टर उसके पास आया। डॉक्टर के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो गंभीर आवाज में बोला, सॉरी टू से मिस्टर ओबेरॉय, एक्सीडेंट छोटा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हुआ है। हमें लगा था कि हम मिसेज ओबेरॉय और उनके बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन हालत काफी खराब है, बहुत ज्यादा खून बह गया है। जैसे ही डॉक्टर ने चाहत की सिचुएशन के बारे में बताया, शिवानी के कदम लड़खड़ा गए थे। आयुष ने उन्हें संभाला। आयुष इमोशनल टाइप का था, इसलिए वो ये हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो तनु ने मामला अपने हाथ में लेते हुए डॉक्टर से कहा, ब्लड का अरेंजमेंट हो जाएगा डॉक्टर, लेकिन चाहत और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हमने भी यही सोचा है, लेकिन मिसेज ओबेरॉय इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनकी डिलीवरी करवा सकें। बच्चे को डिलीवर करवाने के लिए सर्जरी की भी जरूरत है। इन सब में हम एक साथ दो सर्जरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी गहरी चोटें आई हैं। एक वक्त में एक ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बच्चा चाहिए या माँ। डॉक्टर ने सीधे सीधे सारी सिचुएशन बता दी थी। अगर आहन वहां होता तो उन लोगों के लिए डिसीजन लेना मुश्किल नहीं था। कुछ भी कहने से पहले तनु ने शिवानी और आयुष की तरफ देखा। इस बच्चे से उन सबको बहुत उम्मीदें थीं और वो उसके आने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। शिवानी ने खुद को मजबूत किया और डॉक्टर से कहा, आप चाहत को पहले ट्रीट कीजिए। ठीक है, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बच्चे को भी बचा पाएं, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा मिसेज ओबेरॉय, डॉक्टर ने कहा और फिर वहां से वापस ऑपरेशन थिएटर में चले गए। डॉक्टर के जाते ही शिवानी फूट फूट कर रोने लगी। वो आयुष से गले लगाकर बोली, बेचारी चाहत, उसे इतनी कम उम्र में न जाने क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है, पहले खुद की माँ को खो दिया तो अब उसका बच्चा। शिवानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो फिर से रोने लगी। डॉक्टर ने जो भी कहा था उसे सुनकर श्रद्धा का भी चेहरा उतर गया था। तनु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन चाहत हमारी पहली प्रायोरिटी है, बच्चे वो दोनों बाद में भी पैदा कर लेंगे, लेकिन चाहत को कुछ हो गया तो उसके बच्चे का भी हम क्या करेंगे। श्रद्धा ने नम आंखों से कहा, लेकिन चाहत को उसके आने का बहुत इंतजार था, जब भी उससे बात होती थी वो डेट्स काउंट करती रहती थी, उसने बच्चों के नाम तक सोच कर रखे थे। जो हो रहा है वो हमारे बस में कहाँ होता है श्रद्धा, खुद को संभालो क्योंकि हमें चाहत और आहन को भी संभालना है, तनु ने जवाब दिया। अब वो लोग ऑपरेशन खत्म होने का ही इंतजार कर सकते थे। पहले आहन को ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकले। उन्होंने उनके पास आकर कहा, मिस्टर ओबेरॉय के सिर पर हल्की चोट आई है और पैर फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंट काफी बड़ा था लेकिन उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, कुछ ही देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। चाहत और आहन में से आहन ठीक ठाक था, ये सुनकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई, लेकिन साथ ही वो हैरान भी थे, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आहन ज्यादा घायल क्यों नहीं हुआ था। उनके सवालों के जवाब उन्हें जल्द ही मिल गए थे। इंस्पेक्टर वहां पर केस फाइल बनाने के लिए आए तो उन्होंने बताया, पुलिस अभी भी उन गाड़ियों की जांच कर रही है जिन्होंने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी, मिसेज ओबेरॉय ने शायद सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद वो गाड़ी से बाहर गिर गई थी, पुलिस और एम्बुलेंस को भी मिस्टर ओबेरॉय ने ही कॉल किया था। इंस्पेक्टर से उन लोगों ने ज्यादा बात नहीं की। आहन का तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और वो ठीक भी था, लेकिन चाहत अब भी ऑपरेशन थिएटर में थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर शर्मा को उनके एक्सीडेंट की न्यूज मिल चुकी थी, वो अपने केबिन में बैठा न्यूज चैनल देख रहा था। पहले विजय और दामिनी का एक्सीडेंट, तो अब आहन और चाहत का। सब इसे किसी की सोची समझी साजिश समझ रहे थे। राजवीर ने पेपर वेट घुमाते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहा, चलो काम पूरे प्लान से हो गया, ये अच्छा है। तुम दोनों की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अपने नाती या नातिन को खोना पड़ेगा। तकलीफ ही तो देनी थी तुम दोनों को, तभी इतना सब कुछ प्लान किया। बोलते हुए राजवीर पुरानी यादों में खो गया। वो आहन के घर काम करने वाले एक हाउस हेल्पर से कॉल पर बात कर रहा था। राजवीर ने उससे कहा, गाड़ी के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ कर दो और साथ ही पैसेंजर सीट पर जो सीट बेल्ट होता है उसे कट कर दो। पूरी तरह मत काटना, जब मेरे आदमी उसे गाड़ी को झटका देंगे तब सीट बेल्ट टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आहन को ज्यादा चोटें आएं, घायल तो मुझे चाहत को करना है। उसे चोट लगेगी तो उससे ज्यादा दर्द आहन को झेलना होगा। राजवीर के चेहरे पर फिर से ईविल स्माइल आ गई और वो वर्तमान में लौट आया था। उसने खुद से कहा, तुमसे तुम्हारे बच्चे को अलग कर दिया है, अब चाहत की बारी है। तुमसे धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ छीना है आहन ओबेरॉय, और तुम्हें उतना ही लाचार करना है जितना तुम बचपन में थे। तुम दोनों की हेल्थ अपडेट लेना तो बनता है, आखिर बाप का दोस्त बाप की जगह ही तो होता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम निपटाना होगा, होश आते ही तुम दोनों को झटका जो देना है। राजवीर उठा और अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाने के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रात से सुबह हो गई थी, लेकिन चाहत का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था। ओबेरॉय फैमिली परेशान थी कि डॉक्टर ने आकर चाहत की हेल्थ अपडेट क्यों नहीं दी। इस बीच सुबह लगभग 4 के करीब आहन को होश आ गया था। डॉल, आहन नींद में जोर से चिल्लाया, जिसकी आवाज सुनकर पास बैठी नर्स की नींद टूट गई थी। नर्स जल्दी से दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाई। होश में आते ही आहन ने सबसे पहले चाहत के बारे में पूछा, डॉक्टर मुझे मेरी डॉल से मिलना है, वो ठीक है ना? बोलते हुए आहन उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था।
डॉक्टर ने उसे फिर से बिठाते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय, हिलने की कोशिश मत कीजिए, आप इस वक्त खड़े नहीं हो पाएंगे, ऊपर से आपका पैर की फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन चाहत कैसी है, मुझे उसे देखना है, वो ठीक तो है ना डॉक्टर? प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलिए, वो जिस भी हालत में है मुझे उसे देखना है, आहन एग्रेसिव होकर बोला। नर्स ने एक नज़र डॉक्टर की तरफ देखा और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके उसे व्हीलचेयर पर बिठाया। वार्ड बॉयज उसे बाहर की तरफ लेकर आ रहे थे। आहन को देखते ही शिवानी दौड़कर उसकी तरफ गई। आहन होश में था और बिल्कुल ठीक भी था, ये देखकर शिवानी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने सुबकते हुए कहा, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है, आगे से बिना ड्राइवर के तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस वक्त मेरे बारे में नहीं डॉल के बारे में सोचने का टाइम है। वो कहाँ है, वो ठीक है ना? और मेरा बच्चा, उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? आहन ने इमोशनल होकर कहा। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आहन को चाहत के हेल्थ के बारे में कैसे बताएं। वो बच्चे के बारे में भी पूछ रहा था, जिसे बचाने के लिए डॉक्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया था। उन सबको चुप देखकर आहन गुस्से में बोला, मॉम मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी डॉल कैसी है और मेरा बच्चा, वो दोनों ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तलु आहन के सामने आई और गहरी सांस लेकर कहा, डॉक्टर अभी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं, वो पिछले 9 घंटे से क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, बार बार बस अंदर खून ले जाया जा रहा है, शायद चाहत को बहुत ब्लड लॉस हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि वो बच्चे या चाहत में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, और हमने चाहत को बचाने के लिए कहा। तनु ने इस वक्त आहन को सारा सच बता दिया था। वो आहन का नेचर जानती थी कि अगर अब वो उसे झूठ बोलते और बाद में आहन के सामने कोई और ही सच्चाई सामने आती तो वो गुस्से से पागल हो जाता। तनु की बातें सुनकर आहन की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उसने धीरे से कहा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया, मुझे चाहत के रूम के सामने लेकर चलो प्लीज़, मिस्टर ओबेरॉय आपको आराम की ज़रूरत है, डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा। आहन ने तुरंत उनकी बात पर ना में सिर हिला दिया। वो बोला, जब तक मेरी डॉल ठीक नहीं हो जाती मैं वहाँ से हिलूंगा भी नहीं। आहन के जिद करने पर उसे चाहत के ऑपरेशन थिएटर के आगे लाया गया। उन्हें वहां आए हुए लगभग 5 मिनट ही बीते थे कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिससे साफ था कि चाहत के बच्चे को बचा लिया गया था। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि चाहत और बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, इसका सीधा मतलब एक ही था कि चाहत इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे के रोने की आवाज़ आते ही उन सबके दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरी डॉल मुझे बार बार छोड़कर नहीं जा सकती है, आहन ने तेज सांसें लेते हुए कहा। वो लाल आंखों से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था।